بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، آج درس حب الدنيا اور اس کا علاج. جی، پہلے بھی یہ مجلس گئی ہے، بیچ میں غفلت آ گئی، غفلت کی بات آ گئی، ابھی حب دنیا پھر وہی مضمون چل رہا ہے، حب دنیا اور اس کا علاج. فرماتے ہیں دنیا بری نہیں، اس کی محبت بری ہے. دنیا بری نہیں، اس کی محبت بری ہے. ایک ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کسب دنیا ممنوع نہیں، دنیا کمانا منع نہیں. دنیا کمانا منع نہیں، البتہ اس کی محبت اور دل میں اس کی وقعت کرنا ممنوع ہے. اس میں محبت اور اس کی وقعت کرنا ممنوع ہے، خواہ پیرائے مذمت ہی میں ہو، یعنی برائی کے اندر ہو. کیونکہ جس چیز کی دل میں کچھ وقعت نہ ہو، اس کا ذکر مذمت سے بھی نہیں کیا جاتا. یعنی دنیا کی وقت تو نہیں ہے، لیکن دنیا کا تذکرہ کرتا ہے، چاہے دنیا کی برائی کا تذکرہ کرتا ہے، تو فرمائے یہ بھی برا. اس لیے کہ جس چیز کی دل میں وقت نہ ہوتی، تو اس کا ذکر برائی سے بھی نہیں کیا جاتا. تو وقت ہوتی ہے تو ہی اس کا یا تو اچھائی سے تذکرہ کریں گے یا برائی سے. تو کوئی ہے ہی نہیں اس کی محبت. بھائی کیا آواز ہے؟ کوئی میسج ہی نہیں، سلام کا جواب بھی نہیں آیا ابھی تک. اس کا ذکر مذمت سے بھی نہیں کیا جاتا. یعنی کسب حلال، حلال کمائی اور دنیا کمانا منع نہیں ہے. دنیا کمانا منع نہیں ہے، البتہ دو چیزیں منع ہیں. جی، البتہ دو چیزیں منع ہیں. ایک، دنیا کی محبت کا دل میں پالنا، دنیا کی محبت کا دل میں پالنا یہ ممنوع ہے، جیسا کہ پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے کہ دنیا کی ایک طبعی محبت جو غیر اختیاری طور پر انسان کے دل میں ہوتی، طبعی محبت جو غیر اختیاری طور پر انسان کے دل میں ہوتی ہے، وہ ممنوع نہیں. البتہ دنیا کی محبت کا اتنا زیادہ ہونا ممنوع ہے جو یا تو انسان کو گناہ اور معصیت پر آمادہ کر دے یا انہماک میں مبتلا کر دے، یعنی اس میں مشغول کر دے. پیچھے بھی بتایا تھا کہ دنیا کی محبت دو طرح کی ہے، ایک تو وہ جو اللہ سے غافل کر دے، اور ایک وہ جو گناہوں میں ڈال دے. گناہوں میں ڈال دیں گے تو وہ محبت بھی، اور ایک ہے جائز اور حلال ہے لیکن اتنی کہ وہ اللہ سے غافل کر دے تو وہ بھی منع ہے. جی اچھا، جی، یعنی دنیا کی محبت طبعی طور پر جو ہے وہ تو غیر اختیاری ہے، وہ ممنوع نہیں، البتہ دنیا کی محبت کا اختیار سے پالنا یہ ممنوع ہے. اور دنیا کی محبت کا اتنا زیادہ ہونا ممنوع ہے جو یا تو انسان کو گناہوں میں ڈال دے یا پھر اس کو اللہ سے غافل کر دے. پانی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دعا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جب کسرا کے خزانے، جو زمانے کی بڑی طاقت تھی، کسرا کے خزانے ان کے پاس آئے اور مسجد نبوی میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے گئے. سونے چاندی کا ڈھیر لگا، کتنا آیا ہوگا؟ گرام میں نہیں، کیلو میں ڈھیر لگا دیے گئے. اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک دعا فرمائی کہ یا اللہ، ہم آپ سے یہ دعا تو نہیں کرتے کہ اس مال کی محبت کو بالکلیہ ہمارے دل سے ختم فرما دیں. ختم فرما دے، کیونکہ آپ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا ہے. کیا قرآن میں فرمائے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرت من الذهب والفضة والخیل مسومت والانعام والحرث. یعنی انسان کے لیے شہوات کی محبت کو مزین کر دیا گیا، یعنی عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت اور جانوروں کی محبت، کھیتیوں کی محبت. گویا کہ بات انسان کی طبیعت میں داخل ہے کہ ان چیزوں کی کچھ نہ کچھ محبت اس کے دل میں ہوگی. لہذا اس محبت کو بالکلیہ زائل کرنے کی دعا تو نہیں کرتے، البتہ یہ دعا کرتے کہ اللہ، یہ دنیا کی محبت کسی دینی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنے. دنیا کی محبت دینی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنے، اور یہ محبت کسی گناہ پر آمدہ نہ کرے. ہمیں محبت سے انکار تو نہیں کرتے، لیکن ایسی محبت جو ہمیں تجھ سے غافل نہ کر دے یا گناہوں میں مبتلا نہ کر دے. دنیا کو دل و دماغ پر سوار کرنا برا ہے. بہرحال اس دنیا کی وہ محبت جو طبعی ہے اور غیر اختیاری ہے، وہ مذموم نہیں، وہ بری نہیں. لیکن اس محبت کو دل میں اس طرح پالنا کہ ہر وقت دل و دماغ میں اسی دنیا کا تصور رہے، جی دنیا کا تصور رہے، ہر وقت اسی کا خیال ہے، ایک تو ایسی محبت منع ہے، ایسی محبت منع. دوسرا یہ کہ دل میں دنیا کی وقت پیدا کرنا منع ہے. وقت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو بہت اہم سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ دنیا اور اس کی اشیاء، اس کی چیزیں بڑی عظیم دولت ہیں، یہ سمجھنا. یا وہ صورت ہو جائے جیسے قارون کا خزانہ دیکھنے والوں کی ہو گئی تھی. قارون کا خزانہ دیکھ کر انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. یعنی کاش ہمیں بھی ایسا ہی خزانہ مل جاتا جیسا خزانہ قارون کو ملا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے. اس کو دیکھ کر لوگ جیسے آج بھی ہم ایسا ہی کہتے ہیں. ان کمبختوں کو دنیا تو کچھ نہیں ملی جو مانگنے والے تھے، کہا دیکھو کتنا بڑا نصیب والا ہے، اس کو کیا کیا ملا، ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا تو. یہ مانگنے والوں کو دنیا تو کچھ نہیں ملی، لیکن یہ حسرت کر کے گناہ میں مبتلا ہو گئے. یہ حسرت کی نا، تمنا کی، تو ان کو گناہ ہو گیا. اس دنیا کی وقت ان کے دلوں میں اتنی زیادہ تھی کہ دنیا کے مال اور دولت ہونے کی کو خوش نصیبی قرار دے دیا. جی خوش نصیبی قرار دے دیا. اللہ عجیب. وہ شخص بڑا بد نصیب ہے. دیکھیے اگر کسی شخص کو دنیا مل گئی और उसने इस दुनिया से नफा उठा लिया और मजे उड़ा लिए। दुनिया मिल गई, दुनिया से नफा उठा लिया, मजे उड़ा लिए और उससे कुछ लज्जत हासिल कर ली। चलो अगर गुनाह भी कर लिया तो कुछ लज्जत तो हासिल कर ली, लेकिन वो शख्स बड़ा बदनसीब है जिसको मिला तो कुछ नहीं और दुनिया की हसरत ही करता रहा। जी, मिला तो कुछ नहीं लेकिन हसरत ही की, तो भी उस गुनाह में वो मुब्तला हो गया। एक आदमी है, वो तो गुनाह किया तो उसको तो लज्जत मिली, लेकिन इसको तो लज्जत ही नहीं मिली, सिर्फ ये तमन्ना की थी, काश मेरे पास भी इतना माल होता। अब वो मिला कुछ नहीं लेकिन गुना लिखा गया, और ऐसी हसरत की जिसके नतीजे में दुनिया की वक्त और अजमत उसके दिल में पैदा हो गई। ये वक्त और अजमत भी बड़ी खराब चीज है, उसके वक्त और अजमत। बहुत खराब चीज है। तो ये देखो, इसमें भी एक तो दिल में गैर इख्तियारी तौर पर आ जाना, ये तो मना नहीं है, लेकिन बाकायदा उसका तसव्वुर करके कहना है बड़ा खुश नसीब है, अरे मुझे भी मिल जाती और ये होता वो होता, मैं भी ऐसे प्लान बनाता। तो फरमाया ये वक्त है, तो इस तरीके से दिल में ये हसरत करना ये भी गुनाह। किसी ने खूब कहा है, बिसल फकीर अला बाबिल अमीर, बिसल फकीर अला बाबिल अमीर। फकीर से मुराद दरवेश और सूफी है। फकीर से मुराद वो मांगने वाला नहीं, अल्लाह वाला, क्योंकि अल्लाह वालों को भी फकीर कहते हैं। ये भी फकीर आपके सामने जो बैठा है, जो दर्स दे रहा है, ये भी फकीर है। जी फकीर से मुराद दरवेश और सूफी है, यानी जो सूफी किसी अमीर के दरवाजे पर खड़ा हो वो बुरा सूफी है, बुरा है। कोई अल्लाह वाला अमीर के दरवाजे पर जावे तो बुरा है, इसलिए बुरा है कि वो खसरत दुनिया वाला आखिरा का मिसदाक है, कि दुनिया में भी कुछ न मिला और दूसरों का मोहताज रहा। और चूंकि वो अमीर के दरवाजे पर खड़ा है, जिससे मालूम हुआ कि उसके दिल में अमीर की अमारत का यानी मालदार की माल का वक्त है, जिसके नतीजे में उसको आखिरत में भी कुछ नहीं मिलेगा। उसके दरवाजे पर खड़ा होना यानी उसके माल की उसके दिल में वक्त है, इसीलिए तो खड़ा है। वक्त न होती तो बोले ये भी फकीर है, इसके पास क्या है, ये मिस्कीन है। तो ये है, यहां फकीर से मुराद वो है नेक लोग, अल्लाह वाले होते हैं, जो यकीन वाले होते हैं, वो अमीर के दरवाजे पर नहीं खड़े होते। और एक जगह पर फरमाता है कि बिसल अमीर नहीं, निअमल अमीर अला बाबिल फकीर, यानी वो अमीर, वो माल वाला बड़ा खुश नसीब है जो फकीर के दरवाजे पर हो। जो फकीर के दरवाजे, क्योंकि उसके लिए तो इज्जत है कि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, जब भी तो अल्लाह वालों के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, अगर मोहब्बत न होती तो वो क्यों खड़ा होता। तो जिस तरीके से फकीर को माल वाले के दरवाजे पर खड़ा होना बुरा है, ऐसे माल वाले को फकीर के दरवाजे पर खड़ा होना अच्छा है। जी वो तो बहुत ही घटिया इंसान होगा जो माल की मोहब्बत में किसी गुनाह का इर्तिकाब कर ले, माल की मोहब्बत में गुनाह कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात से तो अक्सर मुसलमान महफूज है, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। लेकिन वक्त वाली बात ऐसी है कि उसमें बहुत से पाकबाज लोग भी मुब्तला होते हैं। दुनिया की वक्त, इंसान चंद चीजों के बारे में, दुनिया की चीजों के बारे में झगड़ा जो करता है, ये झगड़ा करना इस बात की अलामत है कि इसके दिल में इसकी वक्त है। मामूली मामूली चीजों पर वक्त न होती तो इंसान छोड़ देता, अपने वक्त को जाये न करता, जैसे साहबे किराम छोड़ देते थे, बोले छोड़ो। तो इसी तरीके से उसमें बहुत से पाकबाज लोग, मसलन जो मालदार है उसके माल की वजह से और उसके पैसों की वजह से दिल में उसकी बड़ी इज्जत है, इसके पीछे फिर रहा है, उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाने की फिक्र में है, उसके साथ ताल्लुकात पर फखर करता है, इतने बड़े बड़े आदमी मेरे मुझे मानने वाले हैं और मेरे हल्के एतिकाद में है, यानी मुझे मानने वाले हैं और हल्के इरादात में है, ये मुझे मानते हैं, मेरे इनके यहां इज्जत है, इतने बड़े बड़े आदमी मेरे पास वक्त वाला फितना, इतना बड़ा फितना है कि हम लोग बकसरत उसके अंदर मुबतला हो जाते हैं। आज यही कहते हैं भाई, तुमको जानने वाले कितने लोग हैं, तुमको मानने वाले कितने लोग हैं, बस उसी से फिर उसकी इज्जत होती। नहीं, दुनिया के जानने वाले मानने वाले अगर लोग ज्यादा है तो ये उसकी इज्जत की अलामत नहीं है, उसके अंदर तकवा है तो इज्जत के। आज मालदारों से दोस्ती पर फखर करते लोग, आजकल हमारा उलमा का तबका जो है उसके अंदर बहुत मुबतला है, बड़े फखर से ये बयान करते हैं कि फलां शख्स तो हमारा बेतकल्लुफ दोस्त है, उसके यहां हमारा आना जाना है, ये फखर क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो आदमी मालदार और दौलतमंद है, इसलिए फखर हो रहा है। माल तो नहीं है लेकिन माल वाले के पास आना जाना है तो भी उसकी गर्मी इतनी आ गई है कि भाई हम तो वो है बेतकल्लुफ उसके साथ में, और उसके माल और दौलत की वजह से दिल में उसकी वक्त है, और लोगों के सामने जब ये बयान करता है कि मेरा उससे ताल्लुक है और मेरा उसके पास आना जाना है या उसका मेरे पास आना जाना है उससे बेतकल्लुफी है, तो इस बयान करने से उसका मकसद ये होता है कि लोग मुझे बड़ा समझे कि इसके तो इतने बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात है। बयान करने का मकसद अपनी वक्त बताना होता है ना, कि इसका तो इतने बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात है ताकि लोग मुझसे डरे। हाँ, ये सब इस बात की अलामत है कि दिल में दुनिया की वक्त है। अल्लाह अल्लाह क्या करेंगे, ये सब इस बात की अलामत है कि दिल में दुनिया की वक्त है। चुनांचे अगर कोई आदमी फकीर मिस्कीन है, उसके साथ अपने ताल्लुकात को दूसरों के सामने बयान नहीं करता, फकीर मिस्कीन से ताल्लुक हो तो नहीं करता, बोले इसमें तो लोग क्या समझेंगे, अरे यही तो है, फकीर मिस्किन से ताल्लुक को खूब बयान करो, बोले मेरा तो वो बहुत अच्छा दोस्त है, तो लोग कहेंगे पागल आदमी इसके पास बैठता है, वही कहने दो, उसी में हमारी हिफाजत है। जी फकीर मिस्किन से कोई दोस्ती होती है तो कोई दिखाता भी नहीं है, और मालदारों से दोस्ती है तो गाता फिरता है कि मेरा तो उससे है, उसके साथ अपने ताल्लुकात को दूसरों के सामने बयान नहीं करता कि मेरा फुला के साथ ताल्लुक है, वो बड़ा मुत्तकी और परहेजगार आदमी है, मैं उसके पास आता जाता हूं। आज अल्लाह वालों से भी अगर किसी का ताल्लुकात है तो बेचारा नहीं बोलेगा, और बोल दिया तो सामने वाला उसको बहका देगा, अरे बोले तू किसके पास हो गया, सीधा सीधा अपना काम कर, दुनिया कमा, तू किस चक्कर में फंस गया। लो अल्लाह वालों से कोई ताल्लुक रखता है सबसे ज्यादा मिस्किन तो वही होते हैं, या बेचारा कोई जलील इंसान है, हालात से घिरा हुआ है, उससे कोई ताल्लुक रखते हैं तो बोले तो अपने आप को बहुत वो समझता है, नहीं उस पर फखर करना चाहिए, वो तो अच्छी चीज है। मैं इसके पास आता जाता हूं, दौलतमंद लोगों से ताल्लुकात का जिक्र कर रहा हूं तो मेरा फुला के साथ ताल्लुक है, वो बड़ा मुत्तकी और परहेजगार आदमी है, ये नहीं बोलेगा, और दौलतमंद लोगों से ताल्लुक का जिक्र हो रहा है उसका करेगा, मालूम हुआ कि दौलत की वक्त दिन से भी ज्यादा है, अगर वो दौलत की वक्त न होती तो वो उसका तस्किरा न करता, और दीन की वक्त उसके सामने होती तो दीन का तस्किरा करता, तो दीन वालों से दोस्ती है उसका तस्किरा नहीं कर रहा है क्योंकि वक्त नहीं है, और माल वालों से दोस्ती है तो उसका तस्किरा करता है। तो ये इस बात की अलामत है कि इंसान के दिल में किस चीज की वक्अत है उसकी जबान से ही पता चल जाता है। जी अल्लाह, क्या थर्मामीटर बता दिया कि इंसान अपना दोस्तों का जब नाम बताता है उसी से समझ जाओ दिल में क्या वक़ात है उसकी। सूरह अबस की इब्तिदाई आयत का नुज़ूल, कुरान करीम की आयत, अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, तेवर चढ़ाई मुंह मोड़ा इस बात से कि उनके पास अंधा आया, यानी एक अंधा जब आया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तो आपने अच्छा नहीं लगा। तो ये आयत कब नाजिल हुई थी? ये उस मौका पर नाजिल हुई थी जब एक मर्तबा हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रुअसाए कुफार मुशरिकीन के मालदार लोग बैठे हुए थे। किसके पास? आपके पास। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको इस्लाम की दावत दे रहे थे। अब मालदारों का तबका था, मुशरिकीन थे, कुफार थे, उनको इस्लाम की दावत दे रहे थे। इतने में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूब मक्तूम रदी अल्लाहु अनहु कोई मसला पूछने के लिए तशरीफ ले आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, वो बेचारे नाबीना और मसला पूछने के लिए आ गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ये तो अपना आदमी है, ये तो अपना साहब है, हर वक्त इनसे बात की जा सकती है, ये तो कभी भी मिल सकते हैं, और ये लोग जो मालदार है मुशरिकीन है ये दूर से आए हुए हैं, अगर इनके दिमाग में इस्लाम की सही समझ आ गई तो ये अपने कबीले वालों के लिए भी मौसिर होंगे, जाके समझाएंगे। ये सोचकर आपने उन मालदारों की तरफ मुतवज्जे तवज्जो फरमाए और उन सहाबी की तरफ तवज्जो कम कर दी, बेइल्तिफाती फरमाई। देखा उनका मकसद क्या था कि ये है, अब इनकी बात इनके से बाद में मिल लेंगे। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से इताब हुआ, तंबी हुई। देखो कितनी सी बात हुई, दिल में जो बात आई ना वो भी सही थी उनके एतबार से, लेकिन अल्लाह ताला को नापसंद हुआ और फौरन तंबी हुई और ये आयत नाजिल हुई। हालांकि बज़ाहिर बिल्कुल सही बात थी कि ये सहाबी तो घर के आदमी हैं, जिस वक्त चाहेंगे मसला पूछ लेंगे, लेकिन ये रोसा और ये मालदार जो कुफर के अंदर मुब्तला है मेरी नसीहत के नतीजे में शायद कुफर से बाज आ जाए, इस्लाम में दाखिल हो जाए, लेकिन बज़ाहिर चूंकि रोसा की मालदारों की तरफ इल्तिफात हो रहा था, तवज्जो हो रही थी, और गरीब आदमी की तरफ बेतवज्जो हो रही थी, उस पर भी अल्लाह की तरफ से इताब हुआ, तंबी हुई। तो देखो इसका मतलब कि अगर ऐसो की मजलिस में हो तो कोई गरीब आए तो बुरा न समझो, बल्कि उस पर भी तवज्जो दो और उससे भी टाइम लो, लेकिन आने ही इसको बुरा, अरे कहाँ आ गया ये, इसको झिड़क मत दो, अपने आप को कंट्रोल करो, मिस्कीन है, क्या पता इसकी तरफ थोड़ी तवज्जो देने पर इसका दिल अगर खुश हो जाए तो तुम्हारा यानी कामयाबी मिल जाए, और जिसको तुम दे रहे हैं तवज्जो दे रहे हैं और उसमें अगर उन्होंने कबूल न किया तो तुम्हें क्या मिला। तो देखो इससे एक उसूल निकला है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि हमसे भी ऐसी भूल। और आम तौर पर होता है कभी हमारे पास कोई दुनिया एतबार से बड़े होते हैं उनके साथ हम बात करते हैं तो गरीब मिस्किन को आता है तो हमें फौरन गुस्सा जैसा आ जाता है, बोले कहाँ बीच में आ गया। हाँ, और वहां तो उनका तो सही था, प्यार से कर रहे थे, उन्होंने कोई झिड़क नहीं दिया था, लेकिन सोचा था बाद में जवाब दे देते हैं। हाँ, तो उस पर भी था, हालांकि जर्रा बराबर भी इस बात का दूर दूर तक भी शाइबा नहीं था कि आपके दिल में दुनिया की दौलत की वक्त है, आपके दिल में तो कुछ नहीं था, हमारे दिल में तो होती है, इसलिए हम उस गरीब मिस्किन की तरफ तवज्जो नहीं देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तो बिल्कुल वक्त नहीं थी, फिर भी आप पर तंबी हुई है। जहां दुनिया की वजह से लोगों की वक्त की जा रही हो, माल और दौलत की वजह से वक्त की जा रही हो, अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए, ये खतरनाक बात है। और ये आम तौर पर ही होता है, खतरनाक बात। ये माशरे में ये बीमारी आम है। अब जब इंसान की अंदर से इसलाह होती है तो फिर इसमें बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। तो जब दुनिया की वक्त निकल जाएगी तो उसके सामने दुनिया वाले बैठे होंगे तो उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। क्यों? कि भाई ये आया मिस्किन आएगा तो उसको भी ऐसे ही इकराम से इस्तकबाल करेंगे जैसे इन लोगों का किया है। इसलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान के बहुत से मरातिब हैं। इंसानों में सबसे ज्यादा खुश नसीब शख्स वो है जिसको दुनिया तो मिली, सबसे ज्यादा खुश नसीब वो है जिसको दुनिया तो मिली लेकिन दुनिया की मोहब्बत न मिली। सबसे ज्यादा खुश नसीब, दुनिया तो मिली लेकिन दुनिया की मोहब्बत न मिली। और यही मकसूद है कि दुनिया तो मिले लेकिन दुनिया की मोहब्बत न मिले। जी, यानी जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया खूब फरावानी के साथ अता फरमाई लेकिन मोहब्बत न दी, दुनिया की हकीकत भी इसके जहन नशीन है। इसलिए जिसको दुनिया खूब मिली होगी और दुनिया की मोहब्बत नहीं होगी, वो कभी किसी का हक नहीं मारेगा बल्कि हक से ज्यादा देगा, क्योंकि उसकी वक्त है ही नहीं। और अगर दुनिया की मोहब्बत होगी तो वो हक तो क्या दे, हक मार कर मारेगा। हालांकि दुनिया है खूब दी है, फिर भी हकूक मार रहा है, फिर भी कंजूसी कर रहा है, फिर भी छोटी छोटी बातों में इंसान दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहा है। हालांकि दुनिया मिली है, क्या जाए। तो ये वक्त की अलामत है कि वक्त की वजह से उससे हाथ से निकल नहीं रही है। और जब वक्त नहीं होगी तो वो सबसे पहले क्या करेगा, हुकूक पूरे पूरे देगा और हुकूक से ज्यादा देगा। दुनिया की हकीकत भी उसके जहन नशीन इसलिए कि ये दुनिया नापायदार चीज है, ये मेरे पास रहने वाले और धोखा का सामान है। और दुनिया भी खूब अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, ये शख्स सबसे ज्यादा खुश नसीब है। कौन सा है मराती, बहुत से मरातिब है यानी दरजात, कैटेगरी कहते हैं ना। स्टेज, तो एक तो वो है स्टेज, क्या है कि एक तो वो इंसान है जिसको दुनिया तो मिली लेकिन दुनिया की मोहब्बत नहीं मिली। अब दूसरा स्टेज क्या है, दूसरे नंबर पर वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने न तो दुनिया दी और न ही दुनिया की मोहब्बत दी, न दुनिया दी और न दुनिया की मोहब्बत दी। फक्र और फाका के अंदर जिंदगी गुजार रहा है लेकिन दुनिया की तलब भी दिल में नहीं है। वो ऐसा है बकौल शख्से, लंग के जेरो लंग के बाला, ने गम दुजदो दुजदो ने गमे काला। ये शख्स दूसरे नंबर पर है, यानी एक कपड़ा नीचे बांध दिया और एक कपड़ा बदन पर डाल दिया, हो गया, और कोई गम नहीं चोरी करने का, कुछ भी नहीं कि है क्या तो चोर चोरी करेगा। अब ये मस्त मौला में ये घूमता है, कोई टेंशन ही नहीं। क्यों? ये दुनिया की मोहब्बत नहीं है और अल्लाह ने दुनिया दी नहीं, तो दुनिया की मोहब्बत होगी तो टेंशन होगा कि मेरे पास दुनिया नहीं है, लेकिन उसकी मोहब्बत ही नहीं होगी तो उसको टेंशन भी नहीं, और जो मिला उस पर अल्लाह का शुक्र है और बिल्कुल इत्मीनान से सोएगा। और अगर दुनिया नहीं होगी और दुनिया की मोहब्बत होगी तो क्या हर वक्त टेंशन टेंशन में डिप्रेशन में जाएगा, हाय मेरा क्या होगा। आजकल तो हर एक इंसान ऐसा फंसा हुआ है, किरायों के मकान पर रहता है। जाहिर बात है अक्सरियत किराए पर रहती है, रेंट पर रहते हैं। अब इनके पास अगर रेंट का पैसा ना हो तो बेचारों को टेंशन होता है, होना भी चाहिए। ये मोहब्बत की अलामत नहीं है, ये तो वो लोग है जिनके पास कुछ भी नहीं है, एक झोपड़ा है और उसमें जो खाना मिल गया तो ठीक है, ना तो फाके से सो गए। इसलिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगे कि अल्लाह अपना जाती मकान अता फरमा, इस रेंट से निकलो, रेंट से निकलने का, किराए से निकल जाओ। ये बहुत, यही हमारे दीन को बर्बाद कर रहा है हर वक्त, सेहत को भी बर्बाद कर रहा है, क्योंकि हर वक्त इसका टेंशन होता है क्या होगा कैसे, इंसान खाता कम है रेंट ज्यादा बढ़ता है। तो हमें अपने आप को बचा बचा कर सबसे पहले अपना मकान खरीदो। जी अच्छा, तीसरा नंबर का वो शख्स है, पहला नंबर का वो है जिसको तो दुनिया तो खूब मिली लेकिन दुनिया की मोहब्बत नहीं मिली। दूसरा नंबर का वो शख्स है जिसको दुनिया भी नहीं मिली और दुनिया की मोहब्बत भी नहीं मिली। तीसरे नंबर का इंसान वो है कि जिसको दुनिया भी मिली और दुनिया की मोहब्बत भी मिली। लो, दुनिया भी है और दुनिया की मोहब्बत भी है, हम इसमें मुब्तला हो गए कि दुनिया भी है और दुनिया की मोहब्बत भी है। अगरचे दुनिया की मोहब्बत की वजह से ममनू उमूर और गुनाह के दायरे में दाखिल हुआ, लेकिन गुनाह के साथ कुछ लज्जत तो उठाई, दुनिया के मजे तो उड़ाए। चलो दुनिया तो मिली, आखिरत न मिली। तो जिसको दुनिया भी मिली है और दुनिया की मोहब्बत भी मिली है, तो ये क्या है, ये शख्स दुनिया की लज्जत तो उठा रहा है, यानी दुनिया से तो फायदा हासिल कर लिया लेकिन आखिरत उसको न मिली, ये खसारे वाला इंसान है। लेकिन ये थोड़े नंबर का खसारा है, इससे ज्यादा चौथे नंबर का जो आता है वो सबसे ज्यादा बड़े खसारे में है। सबसे टॉप नंबर पर पहला इंसान है, सेकंड नंबर पर दूसरा इंसान है, थर्ड नंबर पर ये तीसरा इंसान जो तीसरे नंबर पर है कि जिसको दुनिया की मोहब्बत भी मिली और दुनिया भी मिली। चौथे नंबर पर इंसान सबसे खतरनाक और महरूम है, ये वो शख्स है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, जिसको दुनिया की मोहब्बत तो मिली लेकिन दुनिया नहीं मिली। अल्लाह अकबर, इसमें भी हम मुब्तला है कि दुनिया की मोहब्बत तो मिली दुनिया नहीं मिली, जिसकी वजह से दुनिया न मिलने की वजह से इंसान पता नहीं क्या क्या करता है, धोखा देना, झूठ बोलना, ये करना, वो करना, ये सब क्यों कर रहा है कि दुनिया की मोहब्बत है और दुनिया नहीं मिली। तो बोला आप किसी तरीके से मैं दुनिया कमाऊं, तो यही लोग है। तो आज अक्सरियत इन दो के अंदर है। अब क्या होगा, जब इसलाह होगी तो वो पहले दो के अंदर चले जाएंगे। अब देखो दुनिया तो नहीं मिली है लेकिन दुनिया की मोहब्बत है, तो जाहिर बात है दुनिया की मोहब्बत है तो इंसान क्या करेगा, अब वो अपने आप को बचाएगा नहीं बल्कि प्लानिंग बनाएगा कैसे किसी को चोरी करके लूं, धोखा दे कर लूं, क्योंकि मोहब्बत है। तब जाहिर बात है तो फिर इंसान इसी तरीके से करेगा। और ऊपर वाला इंसान क्या करता है, उसके पास है, वो मोहब्बत की वजह से अल्लाह के हुकूक को मार रहा है कि माल में बहुत सारे हुकूक है, जकात है, हज है, गरीबों की मदद है, और इस तरह दीनी काम है, और बहुत सारे जो हुकूक है कुरान ने बताया, तो वो अपनी मोहब्बत की वजह से उनको मार रहा है। लेकिन ये तो है ही नहीं माल, और हसरत की वजह से सिर्फ गुनाहों में मुब्तला हो रहा है। तो मोहब्बत तो मिली लेकिन दुनिया नहीं मिली, यानी दुनिया की तलब मिली, दुनिया की ख्वाहिश मिली, दुनिया की मोहब्बत मिली लेकिन दुनिया का माल और दौलत और जाह और मनसब वगैरह कुछ नहीं मिला, ओहदा नहीं मिला, कुर्सी नहीं मिली, गोया कि सिर्फ हसरत ही हसरत मिली कि अगर मुझे ये माल मिल जाता और ये डिग्री मिल जाती और मुझे मुझे ये कुर्सी मिल जाती तो ये कर लेता, वो कर लेता, ऐसी गाड़ी मिल जाती और ऐसा बंगला मिल जाता, लेकिन सारी उम्र खाली हाथ गुजार दी, मिला कुछ भी नहीं। ये है खसीरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत दोनों में ये खसारे में रहा। वो तीसरे नंबर का आदमी तो अपने माल से मजे कर लिए, आखिरत का खाली खसारा हुआ, दुनिया तो मजे कर लिए, ये चौथे नंबर का इंसान तो दुनिया में भी खसारे और आखिरत का भी खसारा। तो बताओ अभी हर एक देख ले कि मैं किस नंबर में से हूं। ये है इंसान के मराती। अब अपने आप को देखे और पिछले दो में से निकाल कर पहले दो में पहले नंबर पर लाने की कोशिश करें। इसलिए कि दुनिया की तलब और मोहब्बत की वजह से गुनाहगार हो गया ये चौथे नंबर का। इस तरह आखिरत गई और चूंकि मालो दौलत नहीं मिला इसलिए न दुनिया की लज्जत उठाई और न मजे उड़ाए। इस तरह दुनिया भी न मिली। बहरहाल दिलों में जो दुनिया की वक्त पैदा हो गई है वो इतनी खतरनाक है कि ये वक्त कहीं हमें और आपको खसीरत दुनिया वाल आखिरा का मिसदाक न बनाए। अल्लाह अल्लाह, अरे वक्त निकल गया। दमिश्क के एक बुजुर्ग का वाकया है। शाम के शहर दमिश्क में एक बुजुर्ग बड़े अल्लाह वाले थे। क्या थे भाई? अल्लाह वाले थे। दरवेश सिफत थे। अल्लाह वालों की इनके पास अलामतें थी। मस्जिद में पड़े अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। लोग उनके पास मुलाकात और दुआ के लिए आया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी खबर दमिश्क के गवर्नर तक पहुंच गई कि ये बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग है और मुस्तजाब दावात है। लोग उनके पास दुआएं कराने आते हैं। ये खबर फैलते फैलते दमिश्क के गवर्नर तक पहुंच गई। जो दुआ करते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते। गवर्नर के दिल में ख्याल आया कि जाकर मुलाकात करनी चाहिए और दुआ करानी चाहिए। दुआ के लिए लोग आते हैं ना आजकल, तो अल्लाह वाले दुआ कराने के लिए रह गए। चलो इतना भी तो अच्छा है कि कम से कम इस बहाने से तो आते हैं। अल्लाह ताला उनको आगे बढ़ा देंगे। बल्कि इस बात की दुआ करा तो कर फरमाया दुआ करानी चाहिए। और ये जो बादशाह और बड़े बड़े ओहदे वाले जब किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं ना तो उनका मकसद अपनी इसलाह कराना नहीं होता बल्कि इस बात की दुआ कराना पेश नजर होता है कि हमारी हुकूमत कायम रहे, है ना। तो हुकूमत वाला आएगा तो क्या कराने के लिए आएगा? बोले बस नेक्स्ट में जो आ रहा है ना, बोले हमारा क्या वोटिंग इलेक्शन, तो बोले बस दुआ कर दो। अल्लाह वालों के पास जाए क्या? दुआ कर दो को बस उसमें भी मैं ही आ जाओ। हाँ यही कहेंगे। माल वाला आएगा तो बस पूरा बिजनेस में तो हमारी डीलिंग चल रही है और बस आप दुआ कर दो कि बस वो मुझे मिल जाए। बस मुझे मिल जाए तो बस इसी के लिए आते हैं। और कोई हालात आए तो बस दुआ करो बस हालात दुरुस्त हो जाए। तो हर एक जो आता है वो अपने अपने मकसद के लिए आता है, तो कि हमारी हुकूमत कायम रहे वगैरह। बहरहाल वो गवर्नर एक अपने लाव लश्कर के साथ, हाँ अब जाहिर बात गवर्नर आएगा तो आगे पीछे लोग होंगे ना, उन बुजुर्ग के पास आ गया। लाव लश्कर यानी आगे पीछे सिक्योरिटी जो होती है वो हुकूमत, वो उन बुजुर्ग के पास आ गया। वो बुजुर्ग तकिया लगाए हुए और पांव फैलाए हुए लेटे हुए थे। तकिया लगाए थे और पांव फैले हुए लेटे हुए। जब वो गवर्नर करीब आया तब भी वो अपने पांव फैलाए लेटे रहे। अब देखो गवर्नर आया है फिर भी वो अपने पांव वैसे ही फैलाए हुए और लेटे रहे। लोगों ने बताया कि गवर्नर साहब आए हैं यानी मालदार है, मगर वो जिस हालत में लेटे हुए थे वैसे ही लेटे रहे। तो गवर्नर को बड़ा ताज्जुब हुआ इसलिए कि उसने आज तक कभी ये मंजर नहीं देखा था कि मैं जाऊं और कोई आदमी खड़ा ना हो। मैं जाऊं और कोई आदमी खड़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है? और ये मैंने आज अजीब देखा है। खैर तो उसके लिए आज तक कभी ये मंजर नहीं देखा था कि मैं किसी के पास मुलाकात के लिए जाऊं और पांव फैला कर लेटा रहे, मेरी ताजिम में खड़ा ना हो न इकराम करे। बहरहाल गवर्नर ने मुलाकात की और सलाम किया और दुआ की दरखास्त की। उन बुजुर्ग ने लेटे लेटे ही सलाम का जवाब दिया, दुआ दी और कुछ नसीहत के ऐसे कलिमात कहे जो दुनिया की बेसबाती और आखिरत की फिक्र पर मुश्तमिल। कुछ नसीहत की बात कह दी और ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से दुनिया की वक्त निकल जाए और आखिरत की तरफ मुतवज्जे। उसके दिल पर इन नसीहतों का असर हुआ। उसके बाद वो गवर्नर चला गया। दिल पर असर हुआ उसके बाद वो गवर्नर चला गया। अब देखो, इस गवर्नर ने वापस जाकर अशरफियों की एक थैली हदीये के तौर पर इन बुजुर्ग की खिदमत में भेजी, समझे ना। जब थैले लाने वाला शख्स आया तो उन बुजुर्ग ने पूछा कि कैसे आना हुआ। उन साहब ने कहा कि गवर्नर साहब ने आपके लिए ये पैसे भेजे हैं। इन बुजुर्ग ने फरमाया कि इसको वापस ले जाओ और उसे कह देना कि जो आदमी पाँव फैलाता है वो हाथ नहीं फैलाता। फरमाया जाओ उसको कह देना जो पाँव फैलाता है वो हाथ नहीं फैलाता। उन्होंने पाँव फैला कर रखे थे ना, उसने देख लिया था। तो फरमाया ये तुम क्या कर रहे हो, वो हाथ नहीं फैलाता। अल्लाह, ये कहकर उसको वापस कर दिया। देखो इसको कहते हैं, इंसान, इसको कहते हैं अल्लाह वाले, इनको कहते हैं कि दुनिया की वक्त दिल में नहीं है। इसीलिए तो उनके पाँव फैले हुए रहे, बादशाह को देखकर वो पाँव को समेटा नहीं। जी, तो इस वाकये के बारे में एक बात की वजाहत कर दूं भाई, वो ये कि जब वो गवर्नर मुलाकात के लिए आया तो बुजुर्ग पांव फैलाए लेटे रहे और कोई हरकत नहीं की। ये दर हकीकत अल्लाह वालों पर मुख्तलिफ किस्म के वारिदात होते हैं, कैफियात होती है, याद रखना। बजाहिर तो वैसे भी हदीस में आता है ना कि भाई तुम इकराम करो, है कि नहीं, जिस तरह का आदमी होता है वैसा इकराम करो, बजाहिर इसके खिलाफ होता है, लेकिन हकीकत में ये उनके ऊपर एक हाल होता है, वारिदात होते हैं। एक होता है विर्द और एक होता है वारिद। विर्द और वारिद, विर्द कहते हैं जो वजाइब पढ़ने के होते हैं, वारिदात कहते हैं उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से जो कैफियात जो हमने पहले गई है ना, कैफियात, उसी का नाम है वारिदात होते हैं, जिनमें हर बात काबिले तकलीद नहीं होती। तो अब बुजुर्गों की ऐसी वारिदात, ऐसी कैफियत, तो वो हमारे लिए नमूना नहीं होता है कि हम भी ऐसा ही करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि आने वाले का इकराम किया जाए, तो हमें तो वो सुन्नत चलानी है। इसीलिए तो फरमाया हमारे लिए नमूना अल्लाह के रसूल है, किसी अल्लाह वाले का अमल हमारे लिए नमूना नहीं है, वो तो कैफियत की वजह से होता है, चाहे वो गवर्नर हो या फकीर हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है, एक अक्रिमु करीम कुल्ल कौमिन, यानी अगर कोई शख्स साहिबे मनसब है, यानी कोई बड़ा इंसान है, गवर्नर हो या कोई आलिम हो या कोई माल वाला हो, जो इज्जत वाला, तो उसके मनसब की वजह से भी उसका इकराम करो। तो अब ये इकराम दुनिया की वक्त के लिए नहीं होगा, वो दुनिया की वक्त का ताल्लुक दिल से है। इकराम तो हम करेंगे इसलिए कि ये सुन्नत है। अब वो दिलों की कैफियत अल्लाह जानता है कि तुम इकराम कर रहे हो सुन्नत की वजह से कर रहे हो या माल की वजह से कर रहे हो। ये है कि तुम्हारा खड़ा होना, तुम्हारा बिठाना, तुम्हारा उसकी तारीफ करना, ये सब क्या है, ये अल्लाह ताला दिलों को जानता है कि तुम उसके माल की वजह से कर रहे हो या अल्लाह के नबी की सुन्नत की वजह से। बस अगर सुन्नत की वजह से करोगे तो वो अमल इबादत बनेगा, और अगर उसके माल की वजह से करोगे तो फिर वो दुनिया की वक्त हो गई। अल्लाह वालों पर बाद औकात तकवीनी तौर पर वारिदात होते हैं कि इस वक्त उस शख्स के साथ यही तर्ज अमल फायदा मंद होता है। उनके साथ में बाज मरतबा बाज अल्लाह वालों को देखा है कि बस वो कुछ भी हर एक के साथ इकराम करते हैं, बाद मरता बाद लोग आए तो उन पर कुछ भी नहीं असर हो रहा है, तो वो उन पर एक होता है कि इसका इलाज इसी के साथ में होगा, तो उसकी वजह से वो अल्लाह वाले उसके मुताबिक अमल कर लेते, लेकिन उनका वो तर्ज अमल काबिले तकलीद नहीं कि हम भी ऐसा करें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी बड़े शख्स की आमद के मौका पर तुम भी पांव फैला कर लेट जाओ। सुन्नत जो काबिले इत्तिबा काबिले तकलीद है वो ये है कि अक्रिमु, इकराम करो कौम के बड़े आदमी का, यानी हर कौम के मोअज्ज़ज़ आदमी का इकराम करो। बस यहां तक ही रखते हैं। मुराकबा कर ले थोड़ी।